قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فاطمية 1442 ہجرا، 1442 ہجری، جنوری 2021، خمسہ مجالس امام بارگاہ علی رضا میں رضائے زہرا کے عنوان سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہر مومن اور مومنہ کہ علم ہے کہ شہزادی کی شہادت کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف روایات ہیں، زیادہ مشہور دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ رسول خدا کی وفات کے 75 ڈیز کے بعد شہادت ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ 95، یہ 95 ڈیز کی جو دوسری روایت ہے اس پر یہ مجالس ہو رہی ہیں، اور یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ کوشش کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ جس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا میں اللہ کی رضا، تو یہ رضا آخر ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑی بڑی اہم باتیں ہر ایک کے علم میں ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ اہم باتیں یہ سوچ کے مومن نظر انداز کر دیتا ہے کہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جسے وہ چھوٹی بات سمجھ رہا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں وہی بات بہت بڑی ہو. جیسا کہ معصومین کی احادیث میں کئی مرتبہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کسی بھی نیکی کو یہ سمجھ کے ترک نہ کرنا، یارے یہ اتنی چھوٹی سی معمولی نیکی، بڑا کام کریں گے بڑی نیکی کریں گے، اور کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کے انجام نہ دینا، یارے اتنا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، اور کبھی بھی کسی انسان کو اس سمجھ کے حقیر نہ سمجھنا اور اگنور نہ کرنا، یارے یہ معمولی سا انسان، عزت کرنا ہے احترام کرنا ہے تو کسی بڑے آدمی کا کرو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہی سوچ رہا ہو کہ احترام عزت ہے تو کسی مرجع مجتہد بہت بڑے عالم بہت متقی انسان، اور معصوم نے وجہ بھی بتائی کہ اللہ نے اپنی رضا، وہی لفظ رضا، ایک نیکی میں چھپا کے رکھی، ہو سکتا ہے جسے تم چھوٹی نیکی سمجھ کے اگنور کر رہے ہو اسی کے اندر پروردگار کی رضا چھپی ہوئی ہو، اور خدا نے اپنا غضب و ناراضگی ایک گناہ میں چھپا کے رکھا، ہو हो सकता है कि यही गुनाह जिसे तो मामूली समझ के नजरअंदाज कर रहे हो, इसी के अंदर अल्लाह की नाराजगी छुपी। किसी आपके सामने 50-60 खाने पीने की चीजें हैं और कहा गया किसी एक में जहर, और आपने अपनी अकल के हिसाब से अंदाजा लगाया कि भाई इस वाले में नहीं होना चाहिए, तो बहुत छोटी चीज है, हो सकता है उसी में जहर हो। और अल्लाह ने अपना वली, अपना दोस्त इंसानों में छुपा के रखा है, हो सकता है जिसे तुम बहुत मामूली इंसान समझ रहे हो यही वली या खुदा हो। तो बड़ी नेकी भी करो, लेकिन छोटी नेकी का मौका मिल रहा है उसे नजरअंदाज ना करो। बड़े गुनाह से भी अपने आप को बचाओ, मगर छोटे गुनाह को भी नजरअंदाज ना करो। मुकद्दस और परहेजगार लोगों का भी एहतराम करो, लेकिन छोटा समझ के किसी को हकीर और जलील करार न दो। बहुत ही मशहूर हदीस है, आप सुनते भी रहते हैं और अमली जिंदगी में मैं अक्सर इसकी मिसालें भी देता हूं। ये बहुत सारे लोग, मौलाना कोई दुआ बताइए कि हमें जॉब मिल जाए। हमने कहा ये जो आपको जॉब मिल रहा है, अरे बहुत बहुत छोटे से जॉब, बहुत मामूली, ये क्या करेंगे, वो बड़ा मिले। कितने ही अच्छे मौके वो खो देते, हो सकता है यही छोटा जॉब आगे चल के उसको इतनी बरकत लाके दे। लेकिन ये एक अलग मौजू हो जाएगा। मैं कल की मजलिस में गर्चे अपने ट्रैक से नहीं हटा था, लेकिन जो बराह रास्त बात हो रही थी वो उस अंदाज से बात नहीं हो सकी, इसलिए मैं आज हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब तो वक्त मेरे हाथ से फिसलता जा रहा, तो हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूं कि जो सूरह बनी इसराइल मेरा उन्वान है उसकी 5 आयतें, असल में तो 3 आयतें, वो कम अज कम मैसेज आप तक पहुंच जाए। तो जो उसूल परवरदिगार ने नेकी के बारे में बताया और मासूमीन ने हम तक पैगाम पहुंचाया, वही रिजाए ज़हरा। कि हो सकता है कि बास चीजों को तुम छोटा समझ के छोड़ रहे हो, इसी में रिजाए ज़हरा पोशीदा हो। अब मैं अपनी हद तक कोशिश कर रहा हूं कि उनमें से कुछ बातें आपके सामने पेश करूं, लेकिन साथ में यह भी कोशिश कर रहा हूं कि अजमत सैयदाए ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा एक अलग अंदाज से आपके सामने पेश की जाए, जिसके लिए मैंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79, 80 और 81 का इंतखाब किया। और यह जुमला भी कहा था कि 79 नंबर की आयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहजादी कौनैन के रिश्ते को बता रही, आयत नंबर 79 और आयत नंबर 80 मौलाए कायनात मौलाए कुल अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और फातिमा ज़हरा के रिश्ते को वाज़े कर रही, और आयत नंबर 81 इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला ज़हूरहु शरीफ और शहजादी फातिमा के रिश्ते को बयान कर रही। रिसालत, इमामत और ज़हूर इमाम ज़माना, और ये तीनों आयतें शबे मेराज पैगंबर को अता हुई। इन तीन से पहले वाली आयत नमाज की है, इन तीन के बाद वाली आयत कुरान की है। नमाज और कुरान की आयत के बीच में अल्लाह ने दो पहरेदार खड़े किए हुए, इनके बीच में ये तीन आयतें आई। पैगंबर वाली आयत क्या आए हबीब, नमाज तहज्जुद अदा करो, ये तुम्हारे लिए नाफिलतन लक एक एक्स्ट्रा नमाज है, इसके जरिए अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद अता करेगा, जो इस कायनात का सबसे बुलंद मकाम है, हाईएस्ट स्टेटस इन द यूनिवर्स, दुनिया और आखिरत को मिला के। और आयत नंबर 8 कुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिदक व अखरिजनी मुखरज सिदक, आए हबीब ये दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें दाखिल करे तो सच्चे तरीके से और खारिज, अब इसके तशरी नहीं कर रहा, वजअल मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और ये दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें एक ताकतवर मददगार अता करे, सुल्तान ताकत वाला, नसीरा मददगार। ये मौला अली के हवाले से आयत। और आयत नंबर 81 कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल, कह दो कि हक आ गया बातिल मिट गया, इन अल बातिल काना ज़हूका, बातिल को मिटना ही मिटना। इमाम ज़मान जिस दिन विलादत हुई तो नरजिसे खातून के पहलू सिजदा करते ही इस आयत की तिलावत सिजदे में की, और जिस दिन जहूर होगा तो जिब्राइल की आवाज इमाम जमाना के आने की खबर जब देगी तो पहले इस आयत की तिलावत होगी। कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन अल बातिल कान ज़हूका, फिर ये ऐलान होगा कि इमाम आ गए। तो तीन आयतें मुसलसल रिसालत। अब यहां पे एक छोटी सी बात ये भी अर्ज कर दूं, एक पहलू तो इसका मैं बता चुका हूं कि रसूल को मकाम महमूद मिल रहा, जिस नमाज तहज्जुद की वजह से वह नमाज तहज्जुद अदा हो रही हुजरा फातिमा के अंदर। तो बतौर नमूना मैंने सिर्फ एक रिवायत पढ़ी, वरना और कई रिवायतें हैं कि जब पैगंबर नमाज तहज्जुद के लिए आते हैं तो कई अलग अलग रिवायतें हैं कि बेटी से कभी कोई बात कही, कभी कोई पैगाम दिया। हुजरा फातिमा पैगंबर को मकाम महमूद तक पहुंचाने का जरिया बन रहा। लेकिन इसमें एक बात और अर्ज कर दूं, और वो ये है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी खुसूसियतें, फजीलत एक चीज होती है, खुसूसियत कि खसाइसे कुबरा के नाम से अल्लामा जलालुद्दीन सुयुती ने एक जखीम किताब लिख दी। पैगंबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, पैगंबर की कुछ खुसूसियतें, पैगंबर के कुछ ऐसे लफ्ज अच्छा नहीं, कमालात जो इस दुनिया में कोई ना दिखा सका। देखिए पैगंबर की फजीलत अलग चीज, ये खसूसियात, उनमें से एक अहम तरीन खसूसियत वो जो शहजादी कौनैन के बगैर नामुकम्मल रही जाती। चंद साल पहले मगरबी दुनिया के एक रिसर्च स्कॉलर ने एक किताब लिखी, ये किताब वो है कि जिस जो इस किताब का सब्जेक्ट है, जो इस किताब का मौजू है, जो इस किताब का टॉपिक है, इस अंदाज की बहुत किताबें लिखी गई और हर आदमी ने अपने अपने अंदाज से किताब लिखी। मौजू यह है कि ये दुनिया की जितनी हिस्ट्री हमारे पास है, अब ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, जो मजहब को नहीं मानते साइंटिस्ट हुए या ये हिस्टोरियन हुए, उनके एतबार से जितनी तारीख उनके पास है दुनिया की, उसमें अहम तरीन पर्सनैलिटीज कौन सी गुजरी। तो उमूमन अब तारीख तो दुनिया की इतनी बड़ी तो इसलिए उमूमन 100 का आदत लिया जाता, वरना बाकी तो दुनिया में आजकल तरीका है कि 10 को बेस करके चीजें लिखी जाती। दुनिया के 10 बड़े शहर, दुनिया के 10 बेहतरीन क्रिकेटर, दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खाने, 10। और ये भी इस्लाम में टर्मिनोलॉजी पहले आ चुकी, ये ईमान के 10 दर्जे, सलमान 10 के 10। लेकिन अब ये हिस्ट्री में जितने लोग गुजरे उनमें सिलेक्शन करना, तो 10 तो बहुत छोटा लग रहा है कि नहीं, शख्सियतें बहुत सारी हैं, 10 तो नहीं, तो 100। इस मौजू पर कई किताबें लिखी गई, लेकिन सबसे आखिरी किताब विलियम हार्ट जो सबसे मशहूर हुई। तो 100, द 100 किताब का नाम ही है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, लेकिन मुख्तसर नाम 100। 100 वो शख्सियात जिन्होंने दुनिया पे सबसे ज्यादा अपना असर डाला। और बहुत ये बात मशहूर है और मुसलमान इसलिए बहुत खुश है कि सारी दुनिया की हिस्ट्री देखने के बाद, और वही मैंने कहा कि मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख रहा, लिख रहा बिल्कुल एक एथिस्ट बनकर, एक बेदीन आदमी, तो उन्हीं पर्सनालिटीज को लिया है जो इसके एतबार से साबित हैं कि ये गुजरी। हजरत आदम को तो मानते भी नहीं है वो लोग के गुजरे, कोई आदम थे भी के नहीं थे। उसमें पहला नाम पैगंबर इस्लाम का है कि सबसे ज्यादा दुनिया पर असर डालने वाली पर्सनालिटी, ये 100 जो उसने लिखे हैं ना, तो उनके स्टेटस के एतबार से, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जिसने इस दुनिया की तारीख पर असर डाला वह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो जो तारीफ करें तो कोई हक ही अदा नहीं हो सकता, वो भी कह रहा। और ये 100 के अंदर दो और अंबिया का वो जिक्र कर रहा, और ऐसे अंबिया का कि जो उसका बैकग्राउंड है उन अंबिया को वो मानता, लेकिन जब किताब लिख रहा है तो कहता है कि नहीं सॉरी, वो नंबर 1 पे नहीं आ सकेंगे। हजरत ईसा वो भी नंबर 2 पे भी नहीं रखा, नंबर 3, और हजरत मूसा 15। अच्छा, अब जो वो एक लिस्ट बनाता है तो खाली नाम नहीं देता है कि ये 100 है, रीजन बताता है कि मैंने किसको 16 पे रखा तो इसको 16 पे क्यों रखा, किसी को अगर मैंने 24 पे रखा तो 24 पे क्यों रखा, यानी जो इससे पहले 23 गुजरे ये उनसे एक दर्जा कम क्यों, और जो इसके बाद गुजरने वाले 76 ये उनसे अफजल क्यों। तो अब पैगंबर को नंबर 1 पे रखता है जो उसका रीजन बता रहा, वो रीजन ये बता रहा है कि बाकी दो अंबिया का टीचिंग तो सबकी अच्छी, वो ये कह रहा है कि टीचिंग तो हर एक की अच्छी, हर नबी अच्छी बात कहता है, हर नबी भले की बात कहता है, लेकिन बाकी अंबिया ने जो कहा वो खाली एक मैसेज है, उसमें पूरा अमल करके खुद भी ना दिखा सके और एक ऐसी सोसाइटी नहीं बना सके जहां पे उनकी थ्योरी जो है ना वो उस पर अमल हो रहा हो। पैगंबर इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत है कि जो कहा है खुद भी इस पर अमल किया और लोगों से अमल करवाया भी, जबरदस्ती नहीं, वरना तो डिक्टेटर्स के नाम पहले आ जाते, जबरदस्ती नहीं, खुशी से चेंज किया, लोगों को अंदर से चेंज किया, लेकिन वो भी इसलिए चेंज किया कि खुद पैगंबर अमल कर रहे हैं। अब ये खासियत उसने पैगंबर की बता दी, और यही कुरान करीम पैगंबर की सबसे अहम खासियत बता रहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, रसूल की तालीमात में नहीं, खुद रसूल की प्रैक्टिकल लाइफ में। जबान से अच्छे अच्छे भाषण देना तो बहुत आसान, खुद अमल करके दिखाओ तो कमाल है, यहां बड़े बड़ों के कदम फिसल जाते हैं। तो अब कुरान ने भी यही बात वाज़े की, सूरह यूनुस की आयत, जब पैगंबर ने कुरैश मक्का के सामने अपने रिसालत को पेश किया तो दलील ये दी कि तुम्हारे दरमियान में 40 साल गुजार चुका हूं, तुम मुझे देख रहे हो कि मेरा किरदार कितना साफ और शफाफ है। तो पैगंबर का अपना किरदार ये रिसालत की तबलीग का सबसे बड़ा जरिया था। जितने लोगों ने शुरू में इस्लाम दिल से कबूल किया सबने यही कहा कि हमने आपको हमेशा सादिक पाया, अमीन पाया, लोगों की मदद करते पाया, अच्छी बातें करते पाया। अब ये पैगंबर की खसूसियत, हमें हुक्म बाद में दिया, पहले खुद अमल किया, हमें हुक्म आधा दिया, खुद उससे डबल अमल करके दिखाया, डबल भी मैंने बस ऐसे ही कह दिया, वरना पैगंबर का अमल तो बहुत बुलंद। यहां पर एक कमी आती है, और वो क्या, वो ये है कि कुरान ने भी कहा कि पूरे इंसानों के लिए ये नबी भेजा गया, रहमतुल लिल आलमीन भी तो है ही, रहमत तो है ही, साथ में नबी भी है कि जो तमाम इंसानों के लिए। अब इंसानों में क्या खाली मर्द आते हैं, औरतें नहीं आती, औरतें भी आती, बल्कि औरत ही की वजह से तो दुनिया में इंसान पैदा होते हैं। पैगंबर सबके नबी तो औरतों के भी नबी, अब औरतों के नबी है तो वो जो कुरान कह रहा है वो जो एक गैर जानिबदार एथेस या बेदीन आदमी कह रहा, ये पैगंबर जो कह रहे हैं तो अमल करके दिखा रहे हैं, औरतों के लिए तो ये फार्मूला फिर बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, नमाज मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, पैगंबर ने पढ़ के दिखा दी, सदाकत अमानत जो पैगंबर की दो सबसे अहम खसूसियत सादिक है अमीन है दोनों के लिए, लेकिन कुछ ड्यूटीज कुछ जिम्मेदारियां औरतों की होती जो पैगंबर कर ही नहीं सकते। मतलब हमारे पास खतीब हजरात बहुत ही सिंपल अंदाज में इसको यूं कहते हैं कि अब एक औरत है जो घर के काम भी करना है खाना भी पकाना है, मसलन शौहर दफ्तर से भी आने वाला है, छोटा बच्चा रो भी रहा है, नमाज का वक्त भी जा रहा, अब वो बेचारी पागल बन के बैठी है कि मैं क्या काम करूं और इस वक्त क्या ना करूं। और वो कभी कभार जल के ये कह देगी कि अल्लाह के रसूल तो हुक्म दे के चलेगा, उनको क्या पता कि किस तरह से एक औरत के लिए मुश्किल है कि बच्चे को भी पाले शौहर की भी खिदमत करे और नमाज भी पढ़े और सब टाइम के अंदर, उन्हें क्या मालूम। ये जुमला मैंने बदतमीजी के साथ बहुत से लोगों की जबान से मराजे के बारे में सुना, एक तो आम जिंदगी में, अरे क्या उन्होंने कह दिया कि ये बिजनेस में ये चीज हराम है और वो गुनाह है और ये ना करो वो क्या ना करो, उन्हें क्या मालूम। तो जिंदगी भर वो अपने हुजरे में बैठे रहे, कभी दुकान के ऊपर आके बैठे, कभी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो पता चले। और उससे ज्यादा ये जुमला मैंने सुना है हज में, हज तो बड़ा टेंशन वाला एक अमल है ना, बहुत सारे वाजिबात हैं और सबके टाइम फिक्स है कि ये इसी वक्त करो ये इसी वक्त करो और सब टाइम एक दूसरे के साथ साथ चल रहा है। अब हम बाज़ात कहते हैं अपने हाजियों से कि ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है, जरा देखिए इतना डिले ना कर दे कि एक वाजिब करते हुए दूसरा छूट जाए, इतना स्लो ना कर दे, सब बताते हैं। ये देखिए ये फतवे है महाराजे के ना, उनको क्या पता महाराजे को, वो आके हज करे तो उनको मालूम हो। अब ये आगे अगर आदमी इतना ही बदतमीज है ना, और औरतें तो बाज औकात जब बोलने पे आती हैं तो हर लिमिट क्रॉस कर देती, वैसे बड़ी जबान उनकी बहुत अच्छी होती है, लैंग्वेज बहुत शुस्ता है मर्दों की जबान आप सुन लीजिए, लेकिन जब बोलने पे आती हैं तो ऐसी जली भनी बातें करती हैं कि सामने वाले ही जल भुन के राख हो जाए। अरे क्या पता रसूल को, उनको मालूम होता बच्चे पालते हो शौहर की खिदमत करते हो अपनी नमाज भी पढ़ते हो तो हम देखते। अब जरूरत ये पैगंबर कहें कि नहीं देखो जो दीन मैं लेके आया हूं वो हर एक के लिए आसान, ये पैगंबर ने बार बार कहा ना वो इस तो बे शरीयत इन सहलत इन समहा, मुझे अल्लाह ने इजीएस शरीयत दे के भेजा, तो जब मैं दीन लेके आया हूं बहुत आसान, लेकिन इस जबान से कहा ना वक्त आ गया तो कैसे दिखाई। जरूरत है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी पैगंबर के साथ हो जो औरतों की तमाम जिम्मेदारियों को इस तरह अंजाम दे रही कि किसी औरत को यह कहने का मौका ना मिले कि अगर रसूलुल्लाह औरत होते तो उनको पता होता कि कई वाजिबात को एक साथ किस तरह से किया जाए, वो तो कह के चले गए कि अंजाम दो। अब जरूरत है कि एक शख्सियत आगे बढ़े और कहे कि अगर मेरे बाबा ने जबान से यह कहा है तो फातिमा जहरा अमल करके दिखा रही है कि किस तरह से इन तमाम अहकाम दीन पे अमल किया जा सकता। तभी पैगंबर ने फरमाया फातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं कहा, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा नहीं कहा, फातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा नहीं कहा, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो अगर मैं रसूल हूं तो फातिमा रिसालत में शरीक, रसूल नहीं मगर कार रिसालत में शरीक। मैं कहता हूं क्या खुशकिस्मत है वो घर जहां पे बीवी हो तो ऐसी जो रिसालत को मुकम्मल करे और शौहर हो तो ऐसा जो दीने खुदा को मुकम्मल करे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, शौहर हो तो ऐसा कि उसकी विलायत के ऐलान से अल्लाह का दीन मुकम्मल हो, बीवी हो तो ऐसा कि उसकी सीरत और किरदार से पैगंबर की रिसालत मुकम्मल हो। तो ये वजूद है फातिमा बहुत अहम, पैगंबर की रिसालत को मुकम्मल करने और पैगंबर की रिसालत को एक प्रैक्टिकल मजहब बनाने के लिए, वरना तो चीज भाषण बन जाएगी, किताब में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती अमल कौन कर सकता। यह है उम फातिमा तो अबू, और उसके फौरन बाद अब जो बात कल की मजलिस में आगे बढ़ना थी नहीं बढ़ पाई, लेकिन आज तो बहरहाल इसको आगे बढ़ाना क्योंकि तीन रिश्ते मैंने बताए इस आयत की रोशनी में, तो आज मौला अली का जिक्र होगा तभी तो आखिरी मजलिस में, امام زمانہ کے حوالے سے کچھ باتیں شہزادی کی سیرت کی روشنی. تو اب جہاں یہ آیت مکمل ہوئی سورہ بنی اسرائیل, اس کے فوراً بعد وہ آیت شروع ہو رہی جس کا تعلق مولا علی سے. اب یہ وہ آیت ہے جو میں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ دو بیماریوں کا بہترین علاج ایک شوگر کے مرض کا اور ایک تمام کورونی ڈیزیز یا دل سے متعلقہ تمام بیماریوں. صبح کی نماز کے بعد پانی پہ یہ آیت پڑھ کے پھونکے اور روزانہ 7 مرتبہ اور پیئے تو شوگر کنٹرول ہو سکتی, اور روزانہ نماز فجر کے اختتام پر سینے پہ ہاتھ رکھ کر جہاں دل. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ بہرحال کچھ لوگوں کا دل دائیں رائٹ سائڈ پر بھی ہوتا ہے, ریئر کیس ہے لیکن ہوتا. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار یہ آیت پڑھے, لیکن یہ تو اس آیت کا ایک ضمنی فائدہ. اصل آیت کا پیغام ہے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ, اس کو نہیں سمجھا رہا ہوں, وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. شب معراج پیغمبر سے کہا یہ دعا مانگو اور یہ کہو آیت کے شروع میں قل, یعنی پیغمبر خود سے دعا نہیں مانگ رہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ علی کے لیے دعا مانگو. تو ہے نا کہ پیغمبر کہیں کہ خدا بندہ مجھے علی جیسا مددگار دے دے, نہیں خدا نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ علی کے لیے دعا مانگو. اب اس میں اتنے پہلو ہیں, لیکن چونکہ مجلس شہزادی کونین کے حوالے سے ہے, واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور مجھے ایک مددگار لدنک اپنے پاس سے عطا کر جو تیرے پاس جو تیری طرف سے آئے, سلطان بھی ہو طاقت والا ہو, نصیرہ اور مددگار بھی ہو. اب عربی زبان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, عربی میں ایک لفظ ہے ناصر اور ایک لفظ ہے نصیر. ناصر کو کہتے ہیں اس میں فائل, نصیر کہتے ہیں صفت مشبہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ناصر اس کو کہتے ہیں جب آپ کی مدد کر رہا ہو تو وہ آپ کا ناصر, اور جب وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی مدد کی تو وہ آپ کا ناصر نہیں. اور نصیر کہتے ہیں جو 24 گھنٹے آپ کا مددگار کہلایا ہے, وہ سو بھی رہا ہو تو آپ کا مددگار ہے, وہ آرام بھی کر رہا ہو تو آپ کا مددگار. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مولا کی ولادت کا جشن ہوتا, شہادت کی مجلسیں ہوتی یا عام مجلسیں ایام اعضا کی ہوتی, تو اس میں تو میں اور تفصیل میں چلا جاتا, لیکن کیونکہ شہزادی کونین کا ذکر, یا ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, جو نہیں سمجھیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں. پیغمبر کی ایک حدیث کہ اللہ بعض اوقات اپنے دین کی مدد فاسق و فاجر کے ذریعے بھی کرتا ہے, گناہگار فاسق و فاجر آدمی بھی کبھی دین کا مددگار بن جاتا ہے. لیکن اب فرق ہے, وہ بن گیا دین کا مددگار, کیوں بنا؟ اپنے کسی جذبے کے اعتبار سے, کبھی خاندانی کبھی رشتہ داری کبھی کچھ. یہاں پیغمبر نے کہا نہیں, لدن کا مجھے وہ مددگار چاہیے جو تیری طرف سے آئے, جب وہاں سے مددگار آئے گا تو انتظام بھی وہاں سے ہوں گے, چنانچہ اگر اس کی تلوار ٹوٹ جائے گی تو پیغمبر تلوار نہیں دیں گے, وہ میری طرف سے کوئی تھوڑی آیا ہے, آسمان سے جبرائیل ذوالفقار لے کے نازل ہوں گے, یہاں کا سپاہی ہے, تلوار بھی وہاں کی. لدن کا لدن گا, دیکھیے بہت مختصر آیت ہے, ہر لفظ کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا, طاقتور مددگار عطا فرما. اب یہ تو مولا کے حوالے سے آپ اتنا یہ پیغام سنتے رہتے ہیں اور ہر بار آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے, لیکن بتانا مجھے یہ کہ آپ نے آج کل یہ حدیث بھی بہت سنی ہوگی, کچھ حدیثیں ایسی ہیں شہزادی کی ذات کے حوالے سے جو ہیں تو بہت اہم لیکن پہلے کم پڑھی جاتی تھی, پچھلے چند سالوں میں ذکر بہت زیادہ ہو گیا. ان میں ایک حدیث یہ کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ شہزادی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا, فرمایا نعم العون للعبادہ, وہ میری بہترین مددگار تھی. مختصر یہ کہ شب معراج رسول نے علی کو مانا بحیثیت مددگار, اور علی نے فاطمہ کو مانا بحیثیت مددگار, یعنی جو کائنات کا مددگار ہے علی یا مرتضیٰ, فاطمہ اس کی مددگار. یہی وجہ कि जिंदगी में मौला ने यह जुमला कहा कि बेहतरीन मददगार, और शहादत के बाद कब्र में वो जुमला कहा जिसका यही मफहूम जो तारीख में सिर्फ दो बार हमने सुना, मगर पहली बार फातिमा के हवाले से। कब्र फातिमा बंद करके मौला ने कब्र पे खड़े होके एक जुमला कहा, अल आन इनकसरा ज़हरी, आज अली की कमर टूट गई। आपको याद है दूसरी बार ये जुमला मैदान करबला में आका हुसैन ने कहा था, लेकिन पहली बार जो अली मुर्तजा की के लिए पुष्ट पनाह बने। कमर टूटना दुनिया के हर जबान में इसका एक ही मतलब, एक ऐसा सहारा है, एक ऐसी पुष्ट पनाह है, एक ऐसी ढारस है, एक ऐसी मददगार है। तो शबे मेराज अगर पैगंबर अली के लिए दुआ मांग रहे हैं कि मददगार बने, तो अल्लाह फातिमा को तोहफा मेराज करार देकर अली को मददगार बना रहा है फातिमा के जरिए। अब यहां पे मुख्तसर सी एक बात, फातिमा अली की मददगार ऐसा कि शहादत फातिमा अली की कमर तोड़ रही। दो दिन जो मैंने जुमला कहा शहजादी के लिए, बल्कि हर मजलिस में कहता हूं, वो मौला के लिए भी तो है ना, शहजादी सिद्दीका ताहिरा सिद्दीका, गलत बयानी नहीं कर सकती, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं कर सकती, मुबालिगा नहीं कर सकती, तो अली भी तो सिद्दीक अकबर है। अली के कलाम में भी ना कोई झूठ होगा, ना कोई मुबालिगा होगा, ना बढ़ा चढ़ा के कोई बात की जाएगी। तो अगर कहा कि ये मेरी मददगार, तो वाकई ना इस तरह फातिमा मददगार थी, अब मददगार कैसे? बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती, लेकिन मैंने कहा ना जो मजलिस के शुरू में बात, छोटी बातें बहुत बड़ी होती। जिस अंदाज से फातिमा ने, जो सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, अली का घर संभाला। अच्छा, अब ये बातें मासूमीन के हवाले से तो एक तरह से फायदेमंद नहीं, तो सब एक ही नूर के टुकड़े हैं, लेकिन हमारी बच्चियों को, हमारी औरतों को, हमारे घर की खवातीन को और हमारे घर के मर्दों को पैगाम तो इसी तरह से मिलेगा कि जब पैगंबर की हदीस हमारे सामने कल वाली आ गई, पैगंबर ने तकसीम कार कर दी, फातिमा कह रही है कि मैं इतना खुश हूं इस तकसीम के ऊपर। कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या अच्छे इदारे में, बल्कि बुरे में भी, लेकिन बुरे की मिसाल छोड़ी, लोगों को मुख्तलिफ काम दिए जाते हैं, भाई ये काम, ये फंक्शन करना, ये मजलिस करना, ये इमामबाड़ा चलाना, ये यतीम खाना चलाना, एक आदमी तो नहीं कर सकते ना, काम तकसीम होते, भाई तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। उसमें अगर किसी को उसकी अपनी फील्ड का काम मिल जाए जिसका वो माहिर है, जो उसके लिए बहुत आसान, तो इतना खुश हो जाएगा। एक बहुत बड़ा ये साइकोलॉजी के अंदर एक अलग से एक पैगाम भी कि अगर आदमी को जॉब जो मिले ना, वो अपनी फील्ड का मिले, तो इतना सुकून महसूस करता है और इतना वो तरक्की करता। ये बहुत अहम मौजू है, लेकिन मैं मौजू से हट जाता हूं, मैं मौजू से हटने ना पाऊं इसलिए मैं वापस आ जाता हूं कि फातिमा पैगंबर आके काम तकसीम कर रहे, ना बेटी कुछ बोल रही है ना दामाद कुछ बोल रहा। हो सकता है पैगंबर कह देते फातिमा तुम्हें घर के बाहर के काम करने, अली तुम्हें घर के अंदर के तकसीम संभाल लेते, वो लेकिन वो खुशी नहीं होती। जो फातिमा की ख्वाहिश है, जो फातिमा की तमन्ना है, जैसे शहजादी की तमन्ना पे तो जमीन और आसमान चलते हैं, मैं अब आम माहौल की बात कर रहा हूं, पैगंबर ने वही जिम्मेदारी दी और यह बता दिया कि किस अंदाज से एक मोमिना का घर होना चाहिए। अच्छा, अली और फातिमा की जिंदगी पे कौन अमल करेगा? यजीद, जालिम हुक्मरान, शिमर या मोमिन और मोमिना? और अगर सैयद हैं तो क्या कहने फातिमा के बेटे और फातिमा की बेटी? घर इस तरह चलते, बीवी इस तरह से घर को सुकून का गहवारा बना, मगर शर्त यह है कि शौहर भी घर के बाहर की अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। यहां हमारे यहां बैलेंस नहीं। एक छोटी सी बात अर्ज करके आज की मजलिस खत्म कर रहा हूं, फिर پیغام مکمل کل کروں گا. اب پیغمبر نے تقسیم کام کر دی, تقسیم کار کر دی. اچھا اب اس کے اندر ایک نقصان اور ہے, اگر اگلی روایت ہمارے پاس نہ ہوتی کیا کام ہے, کیا اس میں نقصان ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا. مرد نکھٹو بن جاتے ہیں, گھر میں آ کے ہل کے پانی بھی نہیں پیتے, بیوی بیمار بھی ہے تب بھی اسی کو ناشتہ بنا کے شوہر کو چائے بنا کے دینا. موضوع پہ بات بہت ہوتی ہے تو میں ٹونٹنگ والے جملے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد والی حدیث. تقسیم کار تو کر دی پیغمبر نے کہ تمہارا یہ کام ہے تمہارا یہ کام, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں اس انداز سے اپنے کام میں لگ جائیں. جو میں نے کل کہا کہ عورت جاب نہیں کر سکتی, کیا عورت بزنس نہیں کر سکتی, صرف ایک اس میں رکاوٹ آتی ہے کہ شوہر کی اجازت کا بغیر گھر سے نکلنا حرام, تو وہ بھی شادی شدہ عورت نا. لیکن آج کل کی دنیا نے تو اور آسان کر دیا کہ شادی شدہ عورت بھی گھر سے نکلے بغیر اتنے سارے کام گھر میں انجام دے سکتی ہے. یا آن لائن بزنس میں تو آج کل دنیا میں عورتیں بہت آگے نکل گئی, کمفرٹیبل, جو اسلام چاہتا بھی ہے کہ نامحرموں سے کم انٹریکشن بھی ہو اور پھر وہ چاہے تو سارے کام کرے کوئی حرج نہیں, مگر اپنی بنیادی ڈیوٹی چھوڑے بغیر, جو ہر آدمی کی اصل ایک ڈیوٹی ہوتی. یہاں پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, ذرا جوک نما ہے, لیکن چونکہ یہ شہادت کی رات نہیں ہے, شہادت کے بعد والی رات بھی نہیں ہے, تو اس کو سنایا جا سکتا. بڑا سے بڑا آپ کام کر کے دیں گھر والوں کو, لیکن اپنی اصل ڈیوٹی نہ چھوڑ. بہت ہی مشہور ایک جوک ہے, لیکن سن لیجئے مختصر, میری گفتگو بعض اوقات بہت ڈرائی ہو جاتی. ایک صاحب نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ رکھا, جو ہم کراچی کی زبان میں بات کریں ایک چوکی دار رکھا. تمہارا کام یہ ہے کہ رات بھر جاگو, پہرا دو. ان صاحب کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بالکل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے کراچی سے اسلام آباد جانا تھا, گورنمنٹ آفیسز وہیں ہیں, وہیں کام تھا, جانا تھا. جب وہ صبح گھر سے نکلنے لگے 5 بجے, تو چوکیدار نے ان کے پیر پکڑ لی, کہا کہ آج آپ نہ جائیے. میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا کہ میں ابھی جو سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ جس پلین سے آپ جا رہے ہیں کریش ہو گیا ہے, سب لوگ مر گئے ہیں, تو اگر آپ اس پلین سے گئے, وہ دل میں ایک برا خیال تو آ جاتا ہے ایسی باتیں سن, بہت ریکویسٹ. چلے, انہوں نے اس کی بات مان لی. 2 گھنٹے کے بعد نیوز آئی کہ واقعاً پلین کریش ہو گیا اور سب مر گئے, ایک بھی زندہ نہیں بچا. چوکیدار کو بلایا, کہا تمہارا شکریہ, تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی, یہ انعام لو اور یہ لیٹر لو. لیٹر کیا ہے؟ یو آر فائرڈ, تمہیں تمہارے جاب سے نکالا جا رہا, نوکری سے نکالا جا رہا, جاؤ خدا حافظ. تو گھبرا گئے, میں نے آپ کی جان بچائی, میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی, تو بس یہ خالی انعام, میں تو سمجھ رہا تھا میرا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا. کہا کہ نہیں, تم نے جو نیکی کی وہ اپنی جگہ, لیکن خیانت کی میرے ساتھ. تم نے کہا کہ میں سو رہا تھا, میں نے خواب دیکھا, میں نے تمہیں رکھا تھا رات بھر جاگ کر پہرا دینے کے لیے, سو کیسے گئے تم؟ خواب کا مطلب تو یہ ہے نا کہ تم سو رہے تھے, سو رہے تھے اور پہرا کہاں رہا؟ جو تمہاری ڈیوٹی تھی وہ تم نے انجام نہیں دی, بے شک میری جان بچا لی, اس کے لیے انعام لے لو, لیکن جاب نہیں رکھا جا سکتا. تو اب یہ جو ہر ایک کی ایک ڈیوٹی اسلام نے بتائی ہے, وہ ڈیوٹی کو کرتے ہوئے پھر اور نیکیاں کرے تو کیا کہنا. بہت ساری عورتوں کو میں جانتا ہوں جو دین کے کام کی خاطر اپنے گھروں کو تباہ کر رہی ہیں, نہ شوہر کو ٹائم دے پاتی ہیں, نہ اولاد کو ٹائم دے پاتی ہیں. ہاں, حتیٰ میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, مجلس پڑھنے میں اتنی بزی ہو گئی, لیکن چونکہ یہ عام مومنات کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اور کام, چیریٹی کے کام ہے, ویلفیئر کے کام ہے, لوگوں کی خدمت کے کام ہے, سب کرو, لیکن پہلے اپنی ڈیوٹی. یہ پیغمبر نے تقسیم کر دی, لیکن تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا کہا کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں, تقسیم ہو گئی کام کی, لیکن ایک دوسرے کے کام میں مدد کرنا ہے, تعاون کرنا ہے. अब आइए वो हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल, अब ये तकसीम तो हो गई इसके कई दिनों के बाद, बल्कि कई महीनों के बाद की चीज। अल्लाह के रसूल बेटी के घर में आए, वो तो आते ही रहते हैं, बेटी भी बाप के यहां जाती है, बाप भी बेटी के आते, लेकिन जिस वक्त वो आए तो देखा कि मौला जो है वो दाल पका रहे हैं और शहजादी मसलन आटा गूंद के रोटियां, सालन बना रही है मसलन, मतलब खाना पक रहा है, एक डिश ये बना रहे, एक डिश वो बना रहे। पैगंबर तस्सीम कार कर चुके थे, ये घर के अंदर के काम, लेकिन अब बताना जरूरी था कि अगला स्टेप, जो इस्लाम की तालीमात स्टेप बाय स्टेप होती, पहले दो नमाजें वाजिब हुई, फिर पांच नमाजें वाजिब। पैगंबर ने कहा कि या अली, तुम वो काम कर रहे हो जो अंबिया के करने का काम है। याद रखो, जब कोई आदमी घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करता तो अल्लाह हर कदम पर उसे हज और उम्रे का सवाब देता। जो घर के कामों में वो चल रहा है, फिर रहा है, हर कदम पर उसे हज उम्रे का सवाब मिलता है, और उसके बदन पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह उसे एक ऐसे साल की इबादत का सवाब देता है जिसमें पूरा दिन रोजा रखा गया और पूरी रात इबादत की गई, इतना सवाब मिलता है। और आए अली, ये याद रखो, अब ये वाली हदीस, ये हदीस एक ही है, इसका जो टुकड़ा है ना, ये सदके के लिए आता, सदके के लिए यह भी आ रहा है। जिस वक्त कोई आदमी अपने घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाता है और मदद करता, ये उसके गुनाहों का कफारा बनता। गुनाह तो हमसे और आपसे होते रहते हैं, गुनाह का कफारा, गुनाह साफ करने के तरीके, गुनाह को डिलीट करने के तरीके, गुनाह की जो मैल ईमान पे चढ़ जाती है उसको उतारने के तरीके क्या, उनमें एक ये कि बीवी का साथ दे रहा है घर के कामों में, कफारा तो ज़ुनूब या गुनाहों का कफारा है और अल्लाह के गजब को ठंडा करने वाली चीज है। जब आग भड़क रही है उसको ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं ना। अब देखिए सदके के लिए भी हदीस, अस्सदका तो सिरतुत फी गजब अर्रब, छुपा के सदका दो तो गोया तुम अपने अल्लाह के गजब को ठंडा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो उसके ऊपर, गजब की आग पर। और यहां पे कहा गया कि यही चीज, तभी आपको मराजे के यहां फतवा मिलेगा कि घर वालों को जरा बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका देना यह सदके से ज्यादा सवाब रखता। ये नहीं कि सब उन्हीं को दे दो, हर चीज में बैलेंस है इस्लाम। एक कार्टून आता था टेलीविजन पर और अभी भी आता होगा, पोपाई द सेलर, वो स्पेनिश बहुत खाता था, मेरे जवानी के जमाने की बात है कि रिजविया सोसाइटी में मैं रहता था, एक मोमिन ने उसकी नकल में स्पेनिश ही खाने शुरू की, इतनी बड़ी बड़ी पथरियां उनके गुर्दे में बन गई। बैलेंस होता है, हर चीज बैलेंस होती है, अच्छी से अच्छी चीज पे भी पूरा जोर लगा दो। खैर मैं जरा बहका, लेकिन इसलिए कि मैंने कहा कि लोग अगर आधी बात सुने ना तो फिर गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन छोड़े अभी सबके को। अभी बात ये कि घर वालों की मदद करता है ये गुनाह का कफारा है, परवरदिगार के गजब को ठंडा करना है, और मर्दों के लिए दिलचस्प चीज, हूरों का महर, ये मोमिना हूर से ज्यादा कीमती है जो तुम्हारे घर में आई, इसकी खिदमत करोगे तो वो महर बनेगा हूर के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हदीस का आखिरी टुकड़ा सुन लीजिए, जो एक एतबार से मेरे एतबार से ये इसे बढ़ के अब फजीलत की कोई चीज नहीं। हज का सवाब मिला, उम्रे का सवाब मिला, एक साल की इबादत का सवाब मिला, गुनाह का कफारा, लेकिन अब हदीस का याद रखो, घर वालों की खिदमत सिर्फ वो करेगा जो या सिद्दीक होगा या शहीद होगा या अल्लाह ने उसमें दुनिया और आखिरत का खैर जमा कर दिया होगा। और अल्लाह उसे इतना अजर देता है जितना दाऊद नबी का अजर है, याकूब नबी का अजर है, ईसा नबी का अजर। मैंने कहा ना कि बाज औकात मजलिस के शुरू में मैंने क्या बात कही थी कि बाज औकात कुछ चीजें हमें बहुत छोटी और मामूली लगती। अरे ये करके क्या होगा, ये घर में जो आपने झाड़ू लगाई या वैक्यूम किया, लेकिन उसमें एक लफ्ज है नागवारी के साथ ना हो। ये भी जुमला है हदीस में, नागवारी के साथ ना हो, खुशी के साथ। जैसे एक नमाज आदमी को पढ़ना पड़े वालिदैन के डांटने डपटने से, तो पढ़ता तो है नागवारी के साथ, एक है खुशी के साथ नमाज पढ़ रहा, ये काम खुशी के साथ करे। छह लफ्ज पैगंबर कह गए, सिद्दीक, शहीद, खैर दुनिया वाल आखिरा, याकूब, दाऊद और ईसा। ये है क्या चीज? सिद्दीक किसे कहते हैं? मौलाए कायनात का लकब है सिद्दीक, शहजादी कौनैन का लकब है सिद्दीक, सिद्दीक। कुरान करीम ने दो अहम तरीन अंबिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, वस्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, अपनी किताब में इदरीस नबी का जिक्र करो, ये नबी है और सिद्दीक है इदरीस। वस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, किताब में जिक्र करो इब्राहिम का, ये नबी है और सिद्दीक। अच्छा देखिए, इदरीस नबी का नाम आया कि वो सिद्दीक है, पैगंबर ने कहा कि घर वालों की खिदमत सिद्दीक करता इदरीस और ईसा। जब इमाम जमाना आएंगे तो चार नबी उनकी मदद के लिए आएंगे जो अब तक जिंदा, उनमें पहले इदरीस है, आखिरी ईसा, पहले और आखिरी दोनों का नाम ले ली। ये आपको अजर व सवाब मिल रहा है घर वालों की खिदमत का। और फिर पैगंबर ने कहा कि शहीद, शहीद कौन है? शहीद तो बेशुमार है, लेकिन कुरान ने कहा वयकून अर रसूल अलैकुम शहीद, और रसूल है शहीद। कफा बिल्लाह बैनी व बैनकुम शहीदं व मन इंदहु इल्मुल किताब, अल्लाह और इल्मे किताब रखने वाला मेरा मौला, ये है शहीद। अगर आपने बर्तन धो दिए, अब पता नहीं कि आपके इलाके में बर्तन अभी भी सिंक में धोए जाते हैं कि डिशवॉशर होते हैं, हो सकता है मेरी मजालिस कुछ और लोग भी सुन रहे हैं कुछ और इलाकों, कितनी मामूली चीजें रखती हैं ये, लेकिन अल्लाह का रसूल जब इसका ये अजर बता रहा। कल की हदीस से तकसीम कर दी, और तकसीम का मकसद ये नहीं कि ये नहीं है कि अब मर्द हाथ पांव तोड़ के बैठ जाए कि मुझे तो घर के काम में हिस्सा ही नहीं लेना। हाँ, वो उसूल अपनी जगह जो कल की मजलिस में आ गया था कि खुद ही सामने वाला वॉलंटियर ही कह दे कि हाँ भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। कल मैंने मिसालें दी थी ना कि कुछ चीजों में इस्लाम ने एग्जेम्प्ट किया, लेकिन कहा नहीं एग्जेम्प्ट है फिर भी मैं ये काम करना चाह रहा हूं, ये भी मैंने जरा अपने लिए गुंजाइश रखी। जब मैं ये मजलिसे पढ़ता था एक जमाने में तो बहुत पढ़ता था इसी मौजू पर, औरतों ने कहा मौलाना गजब गजब न कीजिए, बंद कीजिए इस चीज, आते हमारे शोहर वो हमारा डिनर सेट खराब कर देते, दो प्लेटें तोड़ी, चार प्यालियां तोड़ी, ना इधर के काम कर रहा ना उधर के काम कर रहा, ये काम बढ़ाते तो है काम कम नहीं करते, खाना पकाना आते हैं पूरे चूल्हे और बर्नर सब खराब करके चले जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाकायदा कंप्लेन होती थी औरतों की, कुछ ऐसी औरतें भी थी, मरना जी क्या वैक्यूम करते हैं तो और कूड़ा फैला देते हैं बजाय कूड़ा समेटने के, हमारा काम डबल हो जाता है। जो हमारे यहां ऑस्ट्रेलिया में एक कंप्लेन होती है जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, लाइसेंस लेना यहां पे मगरबी दुनिया में खासा मुश्किल, पाकिस्तान से लड़कियां आती हैं खटाखट एक दफा की ट्राई में लाइसेंस मिल गया, मर्द दस दस दफा फेल होते हैं, वही जवाब देते हैं वो लोग, ये लड़कियां जानती ही नहीं ड्राइव करना, जो इनको सिखाओ सीखती जाती है एक दफा में सब सीख ली, ये मर्द क्योंकि गलत सलत उल्टी सीधी ड्राइविंग सीख के आए होते हैं, तो पहले तो उनकी वो गलतियां उनके जहन से दूर करने में खुरचने में 5 ट्राई तो उसमें लग जाती है, फिर जाके कहीं ये सीधी चीज सीखते हैं। तो यही बहुत सी औरतों ने कहा नहीं मौलाना गजब कीजिए, किचन ही तो हमारी जगह थी, जहां की हम मलका थे वहां भी आके आपने गड़बड़ शुरू कर दी। तो खैर ये तो जिमनी बात आ गई। कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि साथ दो, मगर वही जुमला जो अभी मैं कहेंगे, मलेका वो है तुम उसके मददगार बनोगे इस वक्त, तुम हाकिम नहीं बनोगे घर के अंदर। अब ये इतना सवाब बताया जा रहा, इतना सवाब। और उधर दूसरी तरफ जो मर्द की जिम्मेदारियां पैगंबर ने बताया, उसमें जहां जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े औरत को आगे बढ़ के मदद करना, मुझे नहीं कह सकती भाई इसका मुझसे क्या था, लो तुम जानो तुम्हारा काम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। घर में बैठने वाली फातिमा, अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा मस्जिद नबवी में लोगों का इम्तिहान लिया। ये देखिए आजकल जितने ये फेसबुक और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम और जितने भी ये खराफात है ना, ये सब का तोड़ है ये एक हदीस, बहुत मशहूर है, बहुत मुख्तसर है, मगर जहन उधर नहीं जाता जहां पे आज के जमाने में जाना चाहिए। तो खैर आज भी वक्त नहीं है मेरे पास, अब तो हदीस बयान करूंगा, कल जाके इमाम जमाना से जनाब इस फातिमा के रिश्ते पे मौजू मुकम्मल करूंगा। ये ट्रेवल मैंने किया है 5 दिन में, रसूल खुदा से लेके इमाम जमाना तक, पहले मासूम से लेके आखिरी मासूम, शहजादी कायनात की अहमियत। ये हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन मैंने कहा इसमें इतने सारे आज के जमाने के मीडिया आ जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग, अल्लाह के रसूल वक्तन फवक्तन अपनी मस्जिद में लोगों का इम्तिहान लेते थे। यानी वैसे तो मस्जिद का तरीका यह कि सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं, रसूल से ही पूछते रहते हैं, और उस वक्त के हालात में बहुत से लोगों के पास वक्त भी बहुत होता था, लुटे पुटे आए हैं, ना बिजनेस है ना जॉब है, इसी तरह से वो बैठे हुए हैं तो सुबह से शाम। लेकिन कभी कभार पैगंबर, और ये कभी कभार जो है ना, ये मतलब 4-6 महीने में एक दफा तो हो ही जाता, पैगंबर मजमे को चुप कराते हैं कि आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, और एक आध सवाल कर देते हैं। तो इससे दो मकसद हासिल होते हैं, नंबर एक कि जब पैगंबर इससे पहले 4-6 महीने लेक्चर देते हैं, लोग जरा तवज्जो से सुनते हैं कि बाद में कोई सवाल हो जाएगा, और नंबर दो यह है कि पैगंबर को अंदाजा हो जाता। खैर ये तो इल्मे रिसालत में सब कुछ मालूम, पैगंबर बाकी मजमे को ये बता देते हैं कि बैठने वाले इतने सारे हैं, तवज्जो कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, यह भी बहुत अहम चीज थी लोगों को बताना, कि मत समझो कि सब आके बैठे तो सब मेरे चाहने वाले और मुहिब हैं। तो आज पैगंबर ने खामोश कराया, अभी कई सवाल हैं, कभी एक अशरा इस उनवान पर भी होगा अगर मैं जिंदा रहा, जो अगर कि अब बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं उम्र के उस स्टेज पे जा चुका हूं कि जितने मेरे जानने वाले और दोस्त हैं ना, वो सब के सब दूसरी दुनिया में मेरा इंतजार कर रहे हैं, बस अब यही है कि जाऊं तो अल्लाह करे उनसे मुलाकात हो जाए, ऐसा ना हो कि वो वादी सलाम में हूं मैं वादी बरूत में, शहजादी कौनैन ही का सहारा है। तो खुलासा यह है कि कभी मौका मिल गया तो इस पर के पैगंबर के मुख्तलिफ सवालात, तो एक आज ये सवाल कर लिया कि ये बताओ मेरी उम्मती औरत के लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या। कभी ये सवाल मर्दों के लिए किया, कभी ये सवाल घर वालों के लिए किया, आज का मेरा कलमा पढ़ने वाली। अब जो पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ती या पैगंबर को नहीं मानती है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इस हदीस का, हर एक ने जवाब दिया अपने अपने हिसाब से। सलमान फारसी देख रहे हैं कि महसूस कर रहे हैं कि सबके जवाब पैगंबर रद्द कर रहे हैं कि अच्छी चीज है, लेकिन सबसे अच्छी चीज नहीं, वो तो वहीं बैठे थे। अब अगर आपने मस्जिद नबवी की जियारत की है तो मेरी बात फौरन समझ जाएंगे, नहीं की है तो अल्लाह हर मोमिन मोमिना को यह जियारत भी नसीब करे। मस्जिद नबवी में जहां पैगंबर बैठते हैं, जहां हुजरा फातिमा है, फासला ही कितना, तो मस्जिद ही का हिस्सा। सलमान फौरन गए, सवाल किया, शहजादी के दरवाजे खटखटाया, सवाल किया, जवाब लिया, आके वापस बैठ गए। और अभी जो पैगंबर एक 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 वन बाई वन टर्न बाई टर्न सवाल कर रहा, अभी सलमान की बारी नहीं आई। उमूमन पैगंबर सलमान को आखिर में ही रखते हैं, तो पता कि सही जवाब इसी का होगा, तो वो जो सिलसिला हर एक से पूछने का है ना, वो पहले पूरा हो जाए। सलमान सबका जवाब आखिर, सलमान तुम बताओ। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की सबसे अच्छी चीज यह है कि वो कभी किसी नामहरम मर्द के कॉन्टेक्ट में ना आए, कोई नामहरम मर्द उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। पैगंबर ने कहा सलमान जवाब बिल्कुल ठीक है, मगर तुम्हारा जवाब नहीं है ये। ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान 10 के 10 दर्जे ऊपर है। कहा फिर भी ये तुम्हारा जवाब नहीं। सलमान ने कहा हाँ या रसूलल्लाह, ये आपने सही कहा, ये तो मैं अभी अभी अपनी शहजादी से पूछ के आया। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा और क्यों ना हो, फातिमा तो बजा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरा ही टुकड़ा, जो मैं कहता हूं वो फातिमा कहती है, जो फातिमा कहती है वो मैं कहता हूं। और आज का पूरा सोशल नेटवर्किंग नाम इस बात का है कि हमारी वो बच्चियां जो वैसे जिंदगी में किसी नामहरम मर्द से बात ना करें, वो भी नामहरमों के कॉन्टेक्ट में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो। असीरत फातिमा, ये पहलू। तो आप जो शहजादी की खसूसियत आज के मजलिस में कई बार आई, यानी मुझे ये शहजादी की खसूसियत कोई साबित करने की जरूरत नहीं, हर एक जानता कि जो कहा जाता है पहले खुद अमल करते हैं। तो आप शहजादी ने जब ये कह दिया कि उम्मत रसूल की खवातीन की ये सबसे अहम खसूसियत, तो क्या शहजादी नऊज़ बिल्लाह इस पे अमल नहीं करती होंगी? और अमल नहीं करती होंगी तो ये जो मदीने के अंदर मुनाफिका औरतें हैं, ये कोई शहजादी को नजरअंदाज करेंगी? तो हर एक को पता क्या शहजादी इस पे अमल करती हैं। लेकिन ये तकसीम कार के एतबार से घर के अंदर के काम है ना, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो शहजादी घर से निकली कि नहीं निकली? वहां मौला घर के अंदर जो शहजादी के काम है उसमें इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए? लेकिन वही के जो मैंने जुमला कह दिया, जो शहजादी के लिए नहीं कह रहा, अपने खानदान की शहजादियों के लिए कह रहा हूं, हर बच्ची अपने बाप की निगाह में शहजादी होती है और होना चाहिए। कि हुकूमत उसके ही पास होगी, हम जाएंगे तो उसके मातहत काम करेंगे जो उसका डिपार्टमेंट, और इसी तरह घर के बाहर का मसल, तो शहजादी निकले कि नहीं निकले? मैदान ओहद में पैगंबर इस्लाम के जख्मी होने की खबर सुनकर सबसे पहले मैदान ओहद में पहुंचने वाली कौन खातून थी? शहजादी थी कि नहीं थी? मैदान मुबाहला जो शहजादी कहती है नामहरम से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन मैदान मुबाहला में जरूरत पड़ी कि गई कि नहीं गई? जब मौलाए कायनात को अपने हक के लिए जरूरत पड़ी, फातिमा घर से निकली कि नहीं निकली? तो अब ये तकसीम कार तो हो गई, लेकिन उसके अंदर है कि इसमें भी एक दूसरे के साथ ताबुन करना है। तभी मौला ने कहा नेमल औनो लिल इबादा, लेकिन जहां अल्लाह की इबादत हो। शादी में जाना है जहां पे आधे लोग नंगे बैठे हुए, बर्थडे पार्टी में जाना है जहां मिस गैदरिंग हो रही, खानदान की एक तकरीब में जाना है जहां लुड्डी डांस किया जा रहा, ये नहीं। वैसे ये कहने की जरूरत भी नहीं थी, इसीलिए मैंने देखिए इसमें सिर्फ आधा मिनट लगाया है। एक जमाने में मैं इसी बात पे आधा घंटा पढ़ता था, लेकिन अब माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे उलमा खुतबा और जाकरीन आ गए। मगर आखिरी जो बात मैं कह रहा हूं, जो कल की खमसे की आखिरी मजलिस का अनुमान बनेगी, मगर जो सबसे बड़ी मदद एक औरत अपने शौहर की कर सकती, तकसीम कार हो गई, नामहरम से दूर रहे। अच्छा यहां पे एक जुमला इसका कह दूं, अभी ये बात नामुकम्मल है लेकिन आगे कहूंगा, इस्लाम खाली गुनाहों से नहीं रोकता है, वो सारे रास्ते भी बंद करता है जिसमें आगे चल के गुनाह हो सकते हैं। बहुत सी हलाल चीजें भी मना कर दी जाती हैं अगर वो आगे चलकर हराम की तरफ ले जाए। घरों के झगड़े, जो अली और फातिमा का घर एक नमूना है, उनकी मानने वाली बल्कि उनकी अपनी औलाद का घर, कितने ही सैयद और सैदानियों के झगड़े मेरे पास आते हैं, औलाद है फातिमा, ये जिन चीजों की वजह से होते हैं उनमें एक चीज ये भी, घर में नामहरमों का आना या फेसबुक पे नामहरमों का कॉन्टेक्ट, चाहे अभी हराम ना भी हो। जो आयतुल्लाह सीसानी ने फतवा दिया है कि इंटरनेट पे नामहरम से चैटिंग हराम है अगर इसमें गुनाह का इम्कान है, वलो जर्रन बे जर्रन, चाहे अभी कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये चांस है कि आहिस्ता आहिस्ता जब बातें होंगी और चैटिंग होगी तो फिर जरा बेतकल्लुफी होगी, हंसी मजाक होगा और सिलसिला आगे बढ़ेगा। समझाने का वक्त नहीं है क्योंकि मेरी मजलिस का टाइम भी पूरा हो गया और मजमा भी इतना समझदार है और इतने सारे उलमा इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन आखिरी बात जो मुझे छेड़ना ही नहीं चाहिए थी, वक्त ही नहीं, लेकिन एक इशारा, ये सबसे बड़ा ताव्वुन, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते, कभी हालात बहुत अच्छे होते हैं, कभी हालात बहुत खराब होते हैं। अच्छे हालात में शौहर का साथ देना, बुरे हालात में या उसको छोड़ देना, या उसको इतना टेंशन में मुब्तला करना, खास तौर पर माली परेशानी, ये आज की दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। और इंशाल्लाह इस पे बात, तो शहजादी की ये बहुत बड़ी मदद थी अपने मौला के लिए। बाकी बातें इंशाल्लाह कल। लेकिन आज मैंने आखिरी मजलिस में, मजलिस के आखिर इतना ज्यादा शहजादी का मौला के साथ मददगार के तौर पर जिक्र किया कि तकरीर का पहला हिस्सा भी आप भूल गए होंगे कि फातिमा अपने बाबा की मददगार है। आज की तकरीर के बिल्कुल बराबर के दो हिस्से, बाबा की मददगार है, शौहर की मददगार है। और आखिरी चीज जो आएगी कल, आज थोड़ा सा मसाइब में भी जिक्र होगा और कल तो पूरी तकरीर, और औलाद की भी मददगार। अब औलाद में सबसे अहम औलाद इस वक्त इमाम जमाना, ये जुमले को भी समझाऊंगा कि सबसे अहम क्यों मैंने कहा। लेकिन बहरहाल सारे मासूमीन का इंतकाम लेने वाले, इसलिए औलाद की भी मददगार। खाली मासूम औलाद नहीं, उनके लिए तो जुमला कह दूंगा कि एक तरह से उनको जरूरत भी नहीं है, वो खुद मासूम है, हर औलाद। और इसके साथ एक जुमला और अर्ज कर दूं और फिर बहुत ही मशहूर मसाइब के टुकड़े, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल करते हुए कि मेरी ये मजालिस शहादत की रात से शुरू हुई और शहादत के बाद की तारीखों में चल रही, तो मसाइब इसी अंदाज से पढ़े कि शहादत, फिर शहादत के बाद के मसाइब, फिर दफन के मसाइब, फिर आज उसके बाद के मसाइब, और कल आखिरी मजलिस में उसके बाद के मसाइब। वरना अमूमन शहजादी पे जहां से मजालिम शुरू हुए वहां से लोग शुरू करते हैं, लेकिन चूंकि मुझे जिस जो तारीखें मिली उसके एतबार से कि बात शख्सियतें कितना अल्लाह उनको इम्तिहान के मरहले से गुजारता, आमतौर पर यह कहा जाता है कि भाई वो फला को मौत आ गई है तो बस उसकी सारी मुश्किलात दूर हो गई। कोई बहुत मरीज हो, कोई कैंसर का मरीज हो, कोई बहुत तकलीफ वाला हो, मर भी नहीं रहा है, जिंदा भी नहीं हो रहा है, सुम्मला यमूत फी हवला यखिया, ना मर रहा है ना जिंदा, दो साल के बाद आखिर मौत आई, लोग कहते चले इसकी सारी तकालीफ दूर। रसूल की ये तो ख्यारी बेटी वो है कि जिंदगी भर भी मसाइब बर्दाश्त किए और उसके दुनिया से जाने के बाद भी लोगों को चैन नहीं आया, मसाइब का सिलसिला शहादत के बाद भी जारी रहा, बल्कि शहादत के बाद के मसाइब तो जिंदगी के मसाइब से कम भी नजर नहीं आ रहे। पहली मजलिस में एक जुमला मैंने कहा था कि इतना ख्याल था अपनी औलाद का कि हसनैन के कपड़े भी धो गई, हसनैन के लिए खाना भी तैयार करके रख दे, लेकिन ये खाली हसनैन तक नहीं है औलाद, सारी औलाद। चुनाचे एक ऐसी रिवायत जो है तो अय्याम अज़ा की रिवायत, लेकिन शहजादी के बारे में इसलिए आज पढ़ के मजलिस खत्म कर रहा हूं। कल जहां तक बात पहुंची थी मसाइब में उससे आगे बढ़ा रहा हूं, उसमें भी रब का ख्याल करना। जिस गैरतमंद ज़ैनब का गैरतमंद बाप अपनी बेटी को कब्र फातिमा में भी नहीं ले जा रहा है कि चिराग जल रहा है, जब तक कि चिराग गुल नहीं होगा नहीं ले जाऊंगा, उसकी एक गैरतमंद बेटी जब रोजे रोशन में बाजारों में गई और दरबारों में गई, बेमकनाव चादर के गई, बलवाए आम में गई, नामहरमों के मजमे में गई, तो क्या इम्तिहान उसको देना पड़ रहा। कूफे में दाखिल होते होते बाबा याद आ गए, बाबा को पुकारा, क्योंकि कूफा बाबा का शहर। लेकिन याद रखिएगा कि मुसीबत और परेशानी में बाप से ज्यादा मां इंसान को सुकून पहुंचाती है। बेटियां बाप से मोहब्बत ज्यादा करती हैं, लेकिन क्लोज और अटैचमेंट मां से ज्यादा होता। ज़ैनब कुबरा बाप को याद किया कूफे में और मां को याद किया शाम में। इम्तिहान तो यहां भी वही है। वहां बाजारों में गई तो यहां दरबारों में गई, वहां हाथों में रस्सियां हैं तो यहां कैद खाने के मसाइब, और कैद खाने के मसाइब भी इस अंदाज से बर्दाश्त की। यजीद ने इस कैद का निगरान एक जालिम तरीन इंसान को बनाया जिसके सीने में दिल नहीं था, पत्थर था, बल्कि शायद पत्थर से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि खुद फौज यजीद ही के एक सिपाही का जुमला नहीं था शाम गरीब। आए अहले बैत, आपके मसाइब तो ऐसे हैं कि पहाड़ पिघल के पानी बन जाएं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त है इनके दिल। लेकिन अहले बैत की मजलूमियत फजाइल नहीं, अहले बैत के फजाइल उसको नहीं पता, कुरान की आयतें नहीं, वो बद्र ओहद को नहीं जानता, ज़ुल्फ़िकार हैदरी को नहीं जानता, लेकिन खुद अहले बैत का जो किरदार उसने देखा कैद खाने के अंदर, मजलूमियत और मजलूमियत में शुक्र खुदा, वो पत्थर से ज्यादा सख्त दिल रखने वाला पिघल गया उसका। जितना उसके अख्तियार में अहले बैत को सहूलतें दे रहा, मगर एक दिन आता है मेरे मौला सज्जाद के पास और आकर कहता है फर्जंदे रसूल, इस दुनिया में आपका मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तभी यजीद ने ये पोस्ट दी कि आज मेरा बस नहीं चलता कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं, लेकिन मौला बस एक बात, आप लोग ऐसा तो ना करें ना कि मैं भी मारा जाऊं, मेरे बच्चे भी मारे जाएं, मेरा सारा घराना लूट लिया जाए। मौला सज्जाद चौंके, कहा तेरा जुमला बता रहा, तुझे हमसे कोई कंप्लेन और शिकायत है? मतलब बस एक ही शिकायत है, मैं तो जितना मेरे अख्तियार में आपको सहूलत दे रहा हूं ना, और अब आपके खानदान की कोई बीवी इस सहूलत से फायदा उठाते हुए रात को बाहर निकल जाते, कैद खाने के बाहर सड़क पर बैठ के मातम शुरू कर देती। यजीद को पता चल गया तो जन बच्चा को उलू पिलवा दे, मेरा पूरा घराना मारा जाए। मौला सज्जाद ने कहा कि आज तक हमारे दुश्मन को भी हमसे ये शिकायत तो नहीं हुई कि हम उसको नुकसान पहुंचा रहे, तू तो हमारा चाहने वाला बन गया, ये कैसे हो सकता है? एक बात बता, रोजाना शाम को जब तू जाता तो अपने हाथ से कैद खाने को लॉक करके जाता? जी, तो मेरी ड्यूटी। और रोजाना सुबह को आता है तो अपने हाथ से कैद खाने को खोलता है? कहा वो मेरी ड्यूटी। कहा वो दरवाजा खुला होता है, वो लॉक जो है वो खुला होता है? कहा नहीं। कहा अगर ये कैद खाना बंद है और दरवाजा लॉक है तो अगर हम में से कोई बाहर जाना भी चाहे रात के वक्त तो बता कैसे जाएगा? अब चलो फरजंदे रसूल, ये तो आपने ठीक कहा, हो ही नहीं सकता। मौला ने कहा तो तुझे ये धोखा कैसे हुआ कि हम में से कोई बाहर चला जाता? कहा मौला इसलिए कि एक तो वो जो बीवी बाहर सड़क पे मुझे नजर आती है उनका लिबास और अंदाज वही है जो आपके घराने का, अरब के हर इलाके का लिबास भी दूसरे से अलग, दूसरा ये कि चले लिबास तो फिर भी आदमी कहीं और से ले सकता, उनके नोहे उनके बहन उनका मातम वही है जो मैं सारा दिन यहाँ सुनता हूँ, वही सड़क के किनारे बैठ के कभी कहती है हाय मेरा लाल हुसैन, कभी कहती है हाय मेरा अकबर बेटा, कभी कहती है हाय मेरा अब्बास, कभी कहती है हाय मेरा असगर। नोहे भी सिमिलर है, बहन भी वही है। मौला सज्जाद ने कहा अच्छा ऐसा कर, अब कभी वो बीवी नजर आए तो मुझे बुला के ले जा। मौला तो आ गए कैद खाने में, वहां पे सज्जाद की सबसे बड़ी मुहाफिज असरे आशू शामे गरीबा से पहले आका हुसैन अपना सज्जाद जैनब के हवाले करके गए थे, जैनब मैं जा रहा हूँ, इमामत की हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। तो जैनब एक एक लम्हे सज्जाद को देखती रहती है। जैसे ही सज्जाद आए जैनब ने कहा बेटा सज्जाद, ये यजीद जालिम का आदमी इतनी देर क्या बातें करता रहा? मौला ने सारी तफसील बताई। अब जैनब हैरान हो गई, कहा सज्जाद बेटा ये कौन बीबी है? अब नजर आए तो मुझे भी ले जाना। उसी रात को, आधी रात का वक्त है, वो कैद खाने का निगरान होने के बाद और जिंदानी दौड़ा दौड़ा आया, कहा फरजंदे रसूल जरा चल के देखिए आज भी वो बीबी बाहर नजर आ रही। मौला सज्जाद तो इमाम है ना, जानते हैं। आवाज दी फूफी, अम्मा आपने कहा था आइए मेरे साथ चले। दोनों बाहर निकले, देखा वाकई सड़क के किनारे एक सियापोश बीवी उसी मदीने के लिबास में, उसी बनी हाशिम की जय और हयत के अंदर सड़क पे बैठी हुई इसी तरह से मातम कर रही है। मौला जिंदानी को लेके दूर चले गए। अब ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी और एक मरतबा उस बीवी को देखा, कहा कि ऐ बीवी, पहले तो अली की बेटी ज़ैनब आपका शुक्रिया अदा करने आई है। मेरे भरे घर को लूट लिया गया, किसी ने इस लूटे घर का मातम न किया, आपने इस लूटे घर का मातम किया, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। उधर नकाब के पीछे से आवाज आई, अरे इस घर का मातम मैं ना करूं तो और कौन करेगा। अब तो ज़ैनब और हैरान हुई, घबरा के कहा, ये आवाज तो जानी पहचानी है, बीबी जरा अपना तारुफ तो कराइए, आप कौन हैं, ये आवाज मैंने बहुत सुनी है, बस दाएं बाएं कोई नामहरम था ही नहीं। बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाया, ज़ैनब ने देखा मेरे सामने मेरी माँ फातिमा ज़हरा 11 हिजरी शहरे मदीना मुझे अलविदा कह के जाने वाली माँ आज मेरे सामने बैठी है और रोते हुए कह रही है, ज़ैनब घबराना नहीं, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए कोई तेरे साथ हो के ना हो, लेकिन तेरी माँ फातिमा हर मंजिल पे तेरे साथ रहे। رسول کی دختر فاطمہ زہرا کا واسطہ جن کو مرنے کے بعد بھی ظالموں نے چین نہ لینے دیا، وہ اپنے لوٹے گھر کا ماتم کرتی رہی۔ یہ مومنین اور مومنات جو آج کی مجلس میں مصائب فاطمہ سن رہے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ اس دنیا میں فاطمہ زہرا کی مدد اور آخرت میں فاطمہ کی شفاعت نصیب۔ خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار دنیا بھر کے انسانوں کو کووڈ کی اس بیماری سے اور جتنے بیمار مومنین و مومنات ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما۔ جس اسلام کے لیے قربانی دی گئی ہمیں اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اس وقت ذہنی پریشانیوں کے اس عالم میں ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو سیرت فاطمہ زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مردوں کو اپنے گھر میں اسی انداز سے رہنے کی توفیق عطا فرما جو علی ابن ابی طالب کا انداز تھا، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔